शांति। आज के सत्र में प्रैक्टिकली राजयोग का अभ्यास हमें किस विधि से करना है उसके बारे में हम समझेंगे। दो मूल सत्यों को आपने समझ लिया है जिसके ऊपर योग का आधार है कि हम स्वयं कौन हैं और हमारे पिता परमात्मा कौन हैं। अब आपको स्पष्ट है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है। मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है, परंतु मैं शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति हूं, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। योग अभ्यास करने वाली मैं आत्मा हूं। और दूसरा सत्य कल सुबह आपने समझा कि हमें योग लगाना है उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से, और परमात्मा एक ही है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, जो संपूर्ण सत्य ज्ञान सर्व दिव्य गुण और सर्व रूहानी शक्तियों के सागर है, इटर्नल सोर्स है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। तो हम चैतन्य हैं, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। न मैं भौतिक हूं, न परमात्मा भौतिक है। अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से मिलन संबंध बातचीत। कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। चित्र में आप देखिए कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क कनेक्शन प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहां घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क में रहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के द्वारा मिलन मनाते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता है, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी स्पष्ट कहा है, मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयिम बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है और ना ही इसमें कोई भौतिक साधनों की, कोई क्रियाकांड की विधि नहीं है। अक्सर योग के नाम पर हम आसन प्राणायाम के, व्यायाम के हठ क्रियाएं करते रहते हैं। वो फिजिकल योग है, फिजिकल हेल्थ के लिए। जहां तक तंदुरुस्ती की बात है, बेशक आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो तन की दुरुस्ती के लिए। पर जहां तक मन और बुद्धि को प्यूरिफाई और एम्पावर करने की बात है, परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। इसलिए जब भी राजयोग का अभ्यास करने हम बैठते हैं, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठते हैं। कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठिए। आप जानते हैं कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन होती है कि माताएं, बहनें, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते। यहां आप बिगर आसन आराम से बैठे हैं, फिर भी एक घंटे के अंदर कितनी बार ऊपर नीचे होते हैं। अगर सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय आप और ही बॉडी कॉन्शियस बन जाए, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं। इसलिए फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है। एक लक्ष्य पूर्वक बैठना है कि एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, श्रेष्ठ चिंतन के लिए बैठी हूं, इस अटेंशन से बैठना है। हमें अपने आप को समझाना है कि जीवन की अन्य अनेकानेक बातें सोचने के लिए, फिर वो घर गृहस्थी की है, नौकरी धंधे की है, समाज संसार की है, पढ़ाई की, परिवार की है, अन्य सभी बातें सोचने के लिए हमारे पास बाकी के 22 घंटे हैं। हम ये लक्ष्य रखें, ये निश्चित करें कि प्रतिदिन एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम मुझे खुद के लिए देने हैं, प्रभु चिंतन के लिए देने हैं। हो सकता है आजकल आसन प्राणायाम सब सीखते हैं, आप में से कई पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर घंटा दो घंटा आराम से बैठ भी सकते होंगे, परंतु शरीर से आसन लगाकर हम स्थिर बैठ गए, मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर होकर बैठ गए तो क्या फायदा है। हमें तो मन और बुद्धि परमात्मा में, परमात्मा स्मृति में स्थित करना है, केवल शरीर से स्थिर होने की बात नहीं। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को यही समझाते हैं कि शरीर ही एक विचित्र गुफा के समान है, मस्तक के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही, अब और कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं है, अब मन और बुद्धि परमात्मा में आसन्न स्थित मग्न करने की आवश्यकता है। तो राजयोग में शारीरिक कोई क्रिया नहीं है और ना ही इसमें कोई औपचारिक क्रियाएं। जैसा कि भक्ति में परमात्मा की याद में मन मग्न करने के लिए हम कई औपचारिक क्रियाएं करते हैं, कोई रटते हैं, कोई जपते हैं, कोई मुख से गाते हैं, आवाज करते हैं। राजयोग में न रटना है, न जपना है, न हमें मुख से कोई आवाज करना है। ये हमारे भक्ति में विभिन्न प्रयास थे। समय प्रति समय जो भी धर्मात्मा, महात्मा, अध्यात्म पुरुष, योगी संत हुए, हरेक ने नए नए अल्टरनेट हमें बताए कि इस प्रकार करके देखें। चलो सहज रीति मन मग्न नहीं हो रहा है, किसी ने सजेस्ट किया माला फेर के देखिए, मंत्र रट के देखिए, अच्छा मुख से गाइए, लेकिन रटना जपना नेचुरल नहीं है। ये क्रियाएं औपचारिक है, अभ्यास हो जाने के बाद ये मैकेनिकल हो जाती है, यांत्रिक बन जाती है। फिर आप माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहेगा, मंत्र रटते रहेंगे और मन भटकता रहेगा। इसलिए इवन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हो गए हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है, ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल। उन्होंने खुद सजेस्ट किया है कि हाथ के मण के छोड़कर मन का फेर, ये हाथ से माला के मण के फेरने की आवश्यकता नहीं है, मन रूपी मण के को फेरना है। जो मन बॉडी कॉन्शियस बन गया है, बहिर्मुखी बन गया है, संसाराभिमुख बन गया है, हमें मनोस्थिति चेंज करने की जरूरत है। मणके फेरने की बात नहीं। इसलिए हमें चिंतन की दिशा को बदलने की जरूरत है। अब तक हम खुद को देह समझते रहे, इसलिए मन का अधिक उपयोग हमने देह दुनिया प्रवृत्ति साधन इन बातों में ही अधिकतर किया, तो नेचुरली मन बॉडी कॉन्शियस बन गया है, बहिर्मुखी बन गया है, संसाराभिमुख बन गया है। इसलिए वो ही विचार बार बार आते। आप अपने आप को देखिए, अक्सर कौन से विचार बार बार आते? वही शरीर के, संसार के, नौकरी के, धंधे के, दैहिक क्रियाओं के, वही विचार बार बार आते। अब हमें मन अंतर्मुखी बनाना है, मन परमात्मा भी मुख करना है। इसलिए प्रथम अभ्यास आत्मचिंतन आपको सिखाया गया, ताकि पहले स्व में स्थित हो जाए। स्वचिंतन का अभ्यास मन अंतर्मुखी बनाता है, फिर मन परमात्मा चिंतन में स्थित करना है। तो राजयोग के लिए मनोस्थिति चेंज करनी है, कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, और ना ही इसमें कोई शब्द मंत्र है। भक्ति में कोई ना कोई मंत्र लेते हैं और उससे रटते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग मंत्र रटते हैं पर उसके अर्थ को भी नहीं समझते। कई धार्मिक क्रियाकांडों में आपने देखा होगा कि वो ब्राह्मण पंडित श्लोक बोलते रहते हैं, उसका अर्थ कितने लोग समझते। जब अर्थ ही नहीं समझते हैं, हम अभ्यास क्या करेंगे, आचरण में क्या लाएंगे। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझकर आचरण में लाना है। मंत्र माना सजेशन, एडवाइस, सूचन। मंत्री माना सजेशन देने वाला, गाइड करने वाला। अब उस सजेशन को प्रैक्टिकल करना है या सिर्फ रिपीट करना है? इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र रटना नहीं है। कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलने की, कहने की प्रथा की बात नहीं है। कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं। हमें यहां ओम शांति बनना है। ओम मीन्स मैं आत्मा, शांत आत्मा। मुझे अपनी शांत आत्मा स्थिति बना ली। भक्ति में हम कहते हैं ओम नमो शिवाय, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूं। बहुत भावना से हम शिव को नमन भी करते, पर फिर क्या सारा दिन हमें याद भी रहता है कि वो शिव हमें क्या कह रहे हैं? हम एक औपचारिकता निभा लेते हैं, जैसे आपका आप अपने पिताजी को, जैसे कोई बच्चा पिता को रोज सुबह उठकर नमन करता है, गुड मॉर्निंग कहता है, वो औपचारिकता निभाता है। पर फिर सारा दिन एक भी बात पिता की मानता नहीं है, तो उस बच्चे के लिए आप क्या कहें? मां बाप उसको क्या कहें कि भाई ये औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूं वो तुम करो, मेरी अच्छी बातों को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो, वो तुम्हारा वास्तव में सच्चा रिस्पेक्ट है। अगर हमारा परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, समर्पण है, डिवोशन है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले, हम उनके ज्ञान को, गुणों को, उनके श्रेष्ठ मत को माने, हम उनके कार्य में मददगार बन जाएं, वो हमारा सच्चा प्यार है। इसलिए राजयोग में कोई मंत्र रटना नहीं है। सिंपल बात है, मंत्र के अर्थ को समझकर जीवन में धारण करना है। ना ही योग अभ्यास के समय हमें मुख से कुछ भी आवाज करने की, कुछ भी गाने की, बजाने की, आवाज करने की जरूरत नहीं। हम भक्ति में गाते हैं, आवाज करते हैं। माइक लगाकर जोर जोर से रात रात भजन गाते हैं, आवाज करते हैं। पर सत्यता ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। अब आपने समझ लिया है कि परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते। हम आत्माओं का असली घर भी शांति धाम है। ये टॉकी वर्ल्ड है। यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिले हैं, यहां हम आवाज में आते हैं। परमात्मा को मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन की आवाज परमात्मा को पहुंचती। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए हम साइलेंस में बैठते हैं, अंतर्मुखी बन मन ही मन उस पिता को याद करते हैं। न रटना है, न जपना है, न कोई आवाज करना है। हमें मन ही मन उस पिता को याद करना है। अब तीसरी बात, लोग सोचते हैं हमें योग किससे लगाना है, हम सामने क्या रखें, मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें, दीवा जलाएं, हमें योग किससे लगाना। भक्ति में तो हम साधनों का आधार लेते हैं, राजयोग में क्या करना है? अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी भी अब ज्ञानी आत्माएं, अब आप सिर्फ भक्त नहीं है, आपने अपने आप को जान लिया है, पिता परमात्मा को पहचान लिया है। अब आप विवेक से बताइए हमें योग कहां लगाना है, किससे लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से या फोटो से योग नहीं लगाना। ये तो भक्ति में हम परमात्मा को जानते नहीं थे। बेशक सब परमात्मा को मानते हैं, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं है। तो हरेक ने अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार अपने अपने इष्ट के फोटो चित्र मूर्ति रख दी। पर इस प्रकार फोटो चित्र मूर्ति रखने के बाद भी रिजल्ट क्या है? मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, फिर भी मन में दूसरी ही मूर्तें घूम रही। कहने का भाव, चित्र मूर्ति फोटो का आधार लेते हुए भी मन बुद्धि भटकते ही रहे हैं। और आखिर ये आधार हम कब तक लेंगे? इसलिए अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है। जो अभ्यास भक्ति में हम मूर्ति और चित्र साधनों के आधार से या भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकांडों से करते रहे हैं, परमात्मा को याद करने का अभ्यास सही ज्ञान और मन बुद्धि से हमें करना है। अभी आप यहां बैठे हैं इस हॉल में, अभी आप इन आंखों से सूर्य नहीं देख रहे, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया? मन की आंख से विजुअलाइज किया ना? कैसे विजुअलाइज हुआ? क्योंकि बुद्धि में नॉलेज है सूर्य के बारे में। तो आपने मन की आंख से देखा, ज्ञान नेत्र से देखा, परमात्मा भी इन चर्म चक्षुओं से देखने की चीज ही नहीं। आत्मा परमात्मा देखने की चीज ही नहीं है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है। बुद्धि से समझने की, विवेक से पहचानने की शक्तियां हैं। इसलिए योग अभ्यास के समय हम शरीर से यहां बैठते हैं, मन और बुद्धि से हम असली घर परमधाम में जाते हैं, और मन की आंख से परमात्मा के दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप को देखते हैं, और बुद्धि से समझ पूर्वक हम उस पिता को याद करते हैं। इसलिए राजयोग में कोई चित्र मूर्ति फोटो की आवश्यकता नहीं। यहां जो भी चित्र आप देख रहे हैं, म्यूजियम में भी ज्ञान के अनेक चित्र हैं। हमारे केंद्रों की मुलाकात ली होगी, वहां भी ज्ञान के अनेक चित्र लगे हुए होते हैं। ये जो भी चित्र है वो ज्ञान समझाने के लिए है। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। और ये तो आप मानेंगे ना कि जैसे चित्र आप घर में लगाएंगे रखेंगे वैसा ही चरित्र बनेगा, वैसा ही चरित्र बनेगा, क्योंकि उठते बैठते जो आप देखेंगे वो ही प्रेरणा आप लेंगे। कोई अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, कोई क्रिकेटरों के, एक्टरों के फोटो लगाते, अब जो आप देखेंगे वही बनने की प्रेरणा लेंगे। यहां हम ज्ञान के चित्र लगाते हैं ताकि हमें उठते बैठते ज्ञान के हर सत्य की बात याद आए। हमें मन में इनपुट क्वालिटी देना है ना, पॉजिटिव देना है, तो हमें पॉजिटिव सकारात्मक शुभ श्रेष्ठ विचार ऑटोमेटिक आएंगे। तो ये जो भी चित्र है वो ज्ञान समझने और समझाने के लिए है। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगा, ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल है, आप जहां ठहरे हैं आपके कमरों में भी लगा होगा, वो समझाने के लिए कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। इसलिए एक ही वाक्य में कहे, परमात्मा जो है, जैसे है और जहां रहते हैं वहां मन बुद्धि लगाने हैं। अब वो क्या है, कैसे है, वो पूरा परिचय कल आपने समझ लिया। हमें उससे यथार्थ परिचय से याद करना है। सिर्फ भावना और मान्यता से कहीं भी योग लगाओ ऐसा नहीं है। जो है उसी से योग लगाना है। तो राजयोग बहुत सहज योग है। इसमें कोई बाह्य क्रियाएं नहीं है, कोई साधनों का आधार नहीं है। हम हरेक योगी बन सकते हैं, पर जब भी हम भाई बहनों को परमात्मा का ये दिव्य संदेश देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते। योगी जीवन के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। अब तक जो योगी बने, तपस्वी बने, वे घर बार छोड़कर बने। तो लोग सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हमें तो अनेक प्रवृत्ति है, रिलेशंस है, हम योगी कैसे बन सकते हैं। योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, कहीं दूर शांत एकांत में जाकर बैठना पड़े तो योग लग सकता है। परंतु ऐसा नहीं है। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हमें इस दुनिया में रहते हुए जिम्मेवारियों और संबंधों को निभाते हुए हमें अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। इसलिए राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया नहीं छोड़नी है, देहभान को छोड़ना। हमें बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की जरूरत है, और उसका सिंपल अभ्यास है, हमें खुद को आत्मा समझने की आवश्यकता है। हमें आत्म चिंतन का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो न स्थान बदलने की जरूरत है, ना कोई ड्रेस बदलने की जरूरत, कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से या कोई सफेद वस्त्र पहन लेने मात्र से योगी नहीं हो जाता है। हमें ड्रेस नहीं बदलना है, हमें आंतरिक स्मृति वृत्ति को बदलना। हमें अपनी आंतरिक आत्म स्थिति को बदलना है। ये सफेद ड्रेस हमारा यूनिफॉर्म है इस विश्वविद्यालय का। यूनिफॉर्म है, हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए हम फुल टाइम पहनते। पर केवल सफेद ड्रेस पहन लेने से योगी नहीं हो जाते। बेशक योगी को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। हमें स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, आत्मस्थिति बदलने की जरूरत है। कई सोचते हैं हम भी यहां रह जाए, यहां रहने की जरूरत नहीं है। हमें इस ज्ञान और योग को जीवन में साथ ले जाने की जरूरत है। तो अपार भीड़ में भी शांति है, सब कुछ करते भी हम स्मृति में रह सकते हैं। परमात्मा की याद में, भक्ति में हम विभिन्न प्रकार से कुछ करते हैं। देखिए, कोई इसलिए राजयोग का ध्येय सिर्फ धूप दीप पूजा पाठ भजन कीर्तन देव दर्शन शास्त्र पठन करके खुश होने की बात नहीं। लोग कुछ धार्मिक क्रियाकांड करके खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक। राजयोग का ध्येय सिर्फ बाह्य क्रियाकांड करना नहीं, हमें सिर्फ नमन वंदन गायन पूजन दर्शन अर्चन करके खुश हो जाने की बात नहीं है। राजयोग का ध्येय बहुत श्रेष्ठ है, हमें स्वयं पूज्य दिव्य श्रेष्ठ बनना है। इसलिए इस योग में परमात्मा को पुकारना नहीं है। आप देखते हैं विभिन्न उपासना पद्धतियों में कोई परमात्मा को पुकारते, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। कोई कहेगा अल्लाहु अकबर, ओ गॉड, हे भगवान, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं। हमें परमात्मा को पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना। मुख का आवाज उनको नहीं पहुंचता है। कई परमात्मा को कहते हैं हम याद करते हैं, परंतु वास्तव में वे परमात्मा से मांगते ही रहते। हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम उनसे मांगते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं हमें परमात्मा से मांगना नहीं है, हम उनके बच्चे हैं। और बच्चा तो वारिस होता है ना, मंगता थोड़ी होता है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, वारिस है, हमारा बर्थ राइट है परमात्मा से प्राप्त करना। हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता है। सपूत को मां बाप खुद ही सब कुछ देते, देते हैं कि नहीं देते? योग्य बच्चे के लिए माता पिता सब कुछ करते, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें लायक ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता। परमात्मा के लिए हम कहते हैं, गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। खुद को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हम हैं? है? हमें योग्य बनने की जरूरत है। तो याग से ही प्राप्ति है, उनकी स्मृति से ही समर्थी आती है, कहने की जरूरत ही नहीं है। कई परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बड़े दीनहीन लाचार मजबूर बनकर ईश्वर से रिक्वेस्ट करते रहते हैं। हमें परमात्मा को विनती करने की जरूरत नहीं है, वो है ही दाता, वो दे ही रहा है। विनती तो वहां करे ना जहां कोई ना देता हो। परमात्मा तो सागर है, अखुट है, भंडार है, दाता है, वो दे ही रहा है। इस भौतिक जगत के सूर्य को कहना नहीं पड़ता है, वो तो एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट एंड माइट है, वो भौतिक प्रकाश ऊर्जा दे ही रहा है। परमात्मा आध्यात्मिक जगत का सूर्य है, वो सद्ज्ञान का प्रकाश और रूहानी शक्ति हमें दे ही रहा है, हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि पिता सागर है, भंडार है, दाता है, दे ही रहा है, मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं। योग मीन्स सबसे पहली बात परिचय, सद्ज्ञान, जो आपने पूर्व दो लेसन में प्राप्त कर लिया है। जब जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो मिलेंगे कैसे और प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए कोई देवात्मा को परमात्मा समझ रहा है, कोई धर्मात्मा से योग लगा रहा है, कोई महात्मा के चरणों में गिर रहा है, क्योंकि हमें परमात्मा कौन है ये पता ही नहीं। अब सही ज्ञान मिला है, इसलिए पूर्व दोनों लेसन रिवाइज करने की जरूरत है और उस पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। महसूस करना है कि मैं कैसे आत्मा हूं और मेरे पिता कौन है। हमारा उनसे कनेक्शन नहीं रहा। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा उनसे कॉन्टेक्ट, संपर्क नहीं रहा। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको अपने घर में बिजली तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करते हैं। परमात्मा स्पिरिचुअल पावर हाउस है। पर हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। हर एक अपने आप को देखिए, हमने अपने मन और बुद्धि की तारे कहां जोड़ कर रखी। हमने तो अपने मन बुद्धि व्यक्तियों में, वैभव में, व्यसनों में, बातों में, घटनाओं में, हमने तो वहां मन बुद्धि अटैच करके रखे हैं, और जहां से प्राप्ति हो रही है वहां तो कनेक्शन ही नहीं है। तो कैसे अनुभव होगा, कैसे प्राप्ति है? इसलिए खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर मन बुद्धि की तारे परमात्मा से जोड़ना, मीन्स उनके मनन चिंतन में रहना, उसे योग कहते हैं। जिससे आप अटैच रहते हैं उनका चिंतन चलता है, सिंपल बात है। हमें परमात्मा से मन बुद्धि जोड़नी है, क्योंकि प्राप्ति वहां से है। ऑटोमेटिक हम उनके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे। योग मीन्स रिलेशन, परमात्मा से संबंध जोड़ना। प्राप्ति संबंध से होते। आपके पास लाखों रुपए हैं पर मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, तो मुझे कुछ प्राप्ति होगी? नहीं। प्राप्ति तो रिलेशन से होती है। हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहा है। जिससे रिलेशन है उनके प्रति आप टाइम देते हैं, माइंड देते हैं, मनी देते हैं, एनर्जी लगाते हैं। रिलेशन की वो ही तो व्याख्या है। इसलिए हमें संबंध परमात्मा से जोड़ने हैं, निभाने हैं, मन वचन कर्म से फॉलो करने हैं। जब सर्व संबंध परमात्मा से हैं, तो मुझे हर बात में, हर आवश्यकता में, हर समय, हर परिस्थिति में ऑटोमेटिक उनकी ही याद आएगी, क्योंकि वो ही मेरा सब कुछ है। हम गाते हैं ना, वर्णन करते हैं ना परमात्मा के लिए, त्वमेव माता श्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा कहते हैं ना। राजयोग में हम कहते हैं हमें मुख से गाने की, वर्णन करने की जरूरत नहीं। क्या आपके बच्चे या आप खुद मां बाप के आगे रोज बैठकर गाते हो क्या, तुम मेरी मां हो, तुम मेरे पापा हो? हाँ नहीं। आपको निश्चय है यही मेरे माँ बाप है। आपको परख है कि यही मेरे माता पिता है। हमें गाने की, वर्णन करने की रोज जरूरत नहीं है। हमें निश्चय करने की जरूरत है कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली मत पिता है, वो मेरे असली अविनाशी माता पिता गुरु शिक्षक रक्षक साथी सारथी वो ही मेरा सब कुछ है। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये सब देह के संबंध है और ये एक जन्म के लिए है। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा, नया शरीर लेंगे, नए संबंध, नए माँ बाप भाई बहन मित्र मिलेंगे। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए कल आपका सब्जेक्ट था ना, कौन मेरा है? परमात्मा मेरा है, वो अनादि अविनाशी है। ये तो शरीर के माँ बाप भाई बहन मित्र संबंधी है, ये तो एक देह संबंध है एक जन्म के। जब ये समझ में आ जाता है कि मुझ आत्मा का अनादि अविनाशी असली माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी एक परमात्मा है, तो मुझे ऑटोमेटिक उसकी याद आएगी। मुझे उनसे संबंध जोड़ने हैं, उनको याद करना है, मन वचन कर्म से उनको फॉलो करना। तो योग कोई क्रिया नहीं है, योग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। इसलिए योग मीन्स मिलन, वियोग माना बिछड़ना, अलग हो जाना। योग मीन्स मिलन मनाना, जोड़ कनेक्शन करना, संबंध जोड़ना, खुद को आत्मा समझकर जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ना, उनकी याद में रहना, उनकी स्मृति चिंतन में रहना, उसे प्यार करना, उनका बन जाना, उसे योग कहते हैं। इसमें बाह्य कोई चीजें नहीं, परमात्मा से प्यार करना। देखो, याद करना, प्यार करना आत्मा का नेचर है, वो हरेक को आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना? हम हमेशा किसी न किसी को याद करते हैं, किसी न किसी को प्यार करते हैं। परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पहचान कर उनको याद करना, उनसे प्यार करना, उसे योग कहते हैं। तो याद से ही प्राप्ति है। उनकी स्मृति से ही समृद्धि आती है। बाहर जोर से बारिश हो रही हो, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा हो तो भरेगा। हाँ, समझ गए ना प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? वो तो दे रहा है, वो तो मूसलाधार दे रहा है, हम खुद ही कहते हैं ईश्वर जब देता है तो कैसा देता है। देखो हर कोई जानता है कि वो इतना इतना नहीं देता, हम तो इतना इतना मांगते रहते। वो तो बेहद का पिता है, सागर है, ऑलमाइटी है, वो तो अनराधार देता है। वो दे ही रहा है पर बर्तन ही उल्टा है, बुद्धि का योग विपरीत है। हमारा उनसे योग नहीं है, उनसे प्रीत नहीं है, इसलिए प्राप्ति नहीं है, अनुभूति नहीं है। आप खुद चेक करिए ना, हम परमात्मा को याद करते हैं पर कैसे याद करते हैं? कोई मतलब से याद करते हैं? उनसे कुछ चाहिए मदद, कोई स्वार्थ मतलब से याद करते हैं? हमारा योग परमात्मा से नहीं है, प्राप्ति से है, पर उनसे मिल सकता है इसलिए उनको याद करते। अगर वो उनसे ना मिले तो हम उनको याद भी ना करें। कोई स्वार्थ मतलब से याद करते, कोई नियम से याद करते रहते हैं कि हमारा नियम है सुबह शाम नियम से धूप दीप करके याद कर लेते। कहते हैं हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, हम भी करते हैं, मेरी सास करती थी, मैं भी करती, पर न समझ है न प्यार है। बाह्याचार नेमिनाथ है बस। कोई भय से भगवान को याद करते, भय है मुझे कुछ हो न जाए, कोई बीमारी न लग जाए, मेरे गड़बड़ घोटाले खुल न जाए, पाप फूट न जाए, भय से भगवान को याद करते। हमें परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पहचान कर दिल के सच्चे प्यार से याद करना है। जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, और जैसे जैसे आपका प्यार परमात्मा से अनन्य होता जाएगा, उतनी एकाग्रता आती जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं आप तीन दिन में योगी बन जाएंगे। बेशक योग का सही ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे बेसिक, पर योगी बनने के लिए मुझे रोज अभ्यास करने की आवश्यकता है, मुझे सद्ज्ञान का घृत बुद्धि में डालने की जरूरत है ताकि स्मृति की ज्योत आत्मा की जगी रहे। तो राजयोग ज्ञान योग है, क्रिया योग नहीं है, इसका आधार ज्ञान है। इसलिए हर सत्र में पहले ज्ञान दिया जाता है, फिर अभ्यास कराया जाता है। ज्ञान समझने के बाद अब परमात्मा से प्यार चाहिए, प्यार से एकाग्रता दी, ये प्यार योग है। हम कर्म करते भी उनकी स्मृति में रह सकते हैं, ये कर्मयोग है, इजी एंड नेचुरल है, हर कोई योगी बन सकता है। और लास्ट बात मैं ये बताना चाहूंगी कि इतना इजी और नेचुरल इसके अभ्यास की विधि है कि हमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर परमात्मा को याद करने समय हम आंख बंद करके बैठते हैं। लोग कहते हैं हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, हमने देखा वहां भी आंख बंद करके खड़े रहते। स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना कराते हैं, जबरदस्ती आंख बंद कराते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, समझ गलत है। हम ये समझते हैं, ये मानते हैं कि आंखें खुली रहेंगी, हमें सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते हैं। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? भटकता है। देखो आंखें खुली हैं, आपको ये चार दीवार के बीच में जो है वो दिखाई देता है, पर आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती, जिंदे मरे सब दिखाई देते, फिजिकल आई की लिमिट है, मन की आंख को कोई लिमिट है? इसलिए इससे सिद्ध होता है कि आंखें नहीं देखती है, आंख देखने का साधन है, पर देखने वाली मैं आत्मा हूं, मेरे मन और बुद्धि है। हमने बाह्य आंखें बंद कर दी, पर मन की आंखें भटक रही हैं, एकाग्रता कैसे आएगी? बाह्य आंखें खुली हैं, पर मन बुद्धि फोकस है परमात्मा के प्रति, तो मुझे और किसी की याद नहीं आएगी। और ये अनुभव आपको भी है, जब किसी की याद में, ख्यालों में, विचारों में आप खो जाते हैं, कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता। कोई आपसे पूछता है कि फलाना यहां से गया, आप कहते सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो अपने ही विचार में खोई हुई थी। कोई कुछ कहता है, हमें सुनाई नहीं देता है, हम कहते हैं प्लीज दोबारा बताइए, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने सुना नहीं, कान तो खुले ही है। हमें वो ही सुनाई देता है, वो ही दिखाई देता है जहां मन बुद्धि फोकस है। ये तो साधन है देखने के, सुनने के, बोलने के। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी, आप मेरे मस्तक में देखेंगे, इस अवेयरनेस के साथ कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन प्यार से उस पिता को याद करना, कोई फिजिकल ड्रिल मास्टर स्टेज पर फिजिकल एक्सरसाइज करता है और ऑडियंस फॉलो करती, उनको देखकर करती है, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, मन बुद्धि को एम्पावर करने की एक्सरसाइज है। मैं सोल कॉन्शियस बनूंगी, बुद्धि से परम धाम जाऊंगी, उस पिता को याद करूंगी, मुझे देख आप भी अभ्यास करेंगे। मैं सजेशंस देती जाऊंगी कमेंट्री के रूप में, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, मन में ही रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझना है, उस अनुभव में स्थित होना है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, अपना डायरी पर्स फाइल बैग साइड में रख दीजिए, हाथ में गोद में लेके ना बैठे। जितना हो सके एक दूसरे डिटैच होकर बैठेंगे, टच होकर ना बैठे। आंखें नेचुरल खुली रहे, मैं योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे, देखने में तो शरीर ही आएगा, पर हमें अवेयरनेस है कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन बुद्धि से असली घर परमधाम में जाएंगे। हम ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देखेंगे, प्यार से याद करेंगे, परमात्मा को याद करना, प्यार करना, उस याद प्यार में एकाग्र होना, उसे योग कहते हैं। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से खुद को अलग कर ले, आस पास की व्यक्तियों से परिस्थितियों से साक्षी दृष्टा बन जाइए। स्वयं के मस्तक बीच आत्मस्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। ये वर्क प्लेस है, घर नहीं है। मुझ आत्मा का असली घर शांति धाम है। जो इस दुनिया से दूर है, पांच तत्वों से पार है, जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। मैं आत्मा ब्रह्मलोक के निवासी हूं। मैं जानती हूं पिता परमात्मा भी परमधाम के निवासी हैं। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता आपके सद्ज्ञान को प्राप्त कर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। अब मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और आप कौन है। मेरे प्यारे शिव पिता, आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान को आप के सर्व दिव्य गुणों को, आपकी सभी रूहानी शक्तियों को मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। मुझे ये निश्चय और नशा है मेरे मीठे शिव बाबा, आप शांति के सागर शांति दाता है। और मैं आत्मा आपकी संतान, मैं स्वयं भी शांत हूं, मुझे भी शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलानी है। प्यारे पिता, आप सर्वशक्तिमान सदा पावन हैं, आपकी याद से मैं आत्मा भी शुद्ध बनती जाती हूँ। मैं आपको याद करती हूँ, आपके साथ का अनुभव करती हूँ। मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। शांति दूत हूँ, कल्याणमयी शक्ति हूँ, ज्ञान की गंगा हूँ। ओम शांति।